ओम शांति। एक बिल्ली भारत से साइट सीइंग के लिए इंग्लैंड गई, घूमने फिरने के लिए। तो वहां वो बहुत घूमी और इंग्लैंड की महारानी के दरबार में भी गई। और जब घूमकर वापस आई तो सभी ने पूछा क्या क्या देखा। तो उस बिल्ली ने कहा इंग्लैंड बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें मैंने देखी। सबने पूछा क्या इंग्लैंड की महारानी को देखा। बिल्ली ने कहा हाँ, इंग्लैंड की महारानी को भी देखा। सबने पूछा इंग्लैंड की महारानी कैसी थी, उसका मुकुट कैसा था, उसका सिंहासन कैसा था, उसके वस्त्र कैसे थे। तो बिल्ली ने कहा बाकी सब तो मैंने बहुत देखा, परंतु उसका मुकुट कैसा था, उसका चेहरा कैसा था, सिंहासन कैसा था, ये मैं नहीं देख पाई। क्योंकि जब इंग्लैंड की महारानी से मीटिंग थी, मिलने गई थी, तो उस बिल्ली ने कहा क्योंकि उसी समय जो सिंहासन था उसके नीचे एक चूहा घूम रहा था और मेरा सारा ध्यान उस चूहे की तरफ था और चूहा बहुत सुंदर था, इतना अधिक सुंदर था कि लार टपकने लगी। और इसलिए मैं मिलने तो गई थी इंग्लैंड की महारानी से, परंतु मिल नहीं पाई उस चूहे की वजह से। चूहा इधर से उधर और उधर से उधर कर रहा था, तो सारा समय उस चूहे को ही निहारती रही। ये चूहा मुझे मिल जाए तो बस। और इस कारण से इंग्लैंड की महारानी को मैं नहीं देख पाई। ऐसा उसने अपना अनुभव, उनकी जो क्लास होगी बिल्लियों की, शायद उसमें सुनाया होगा यात्रा अनुभव, चाहे व्यक्ति कहीं पर भी हो। यदि उसे कोई चीज प्रिय मिल जाए, चाहे व्यक्ति कहीं पर भी चला जाए, यदि चाहे व्यक्ति कहीं पर भी हो, यदि उसे कोई ऐसी चीज दिख जाए जो उसके पसंद की है, जो उसे बहुत प्रिय है, तो सारा ध्यान उसका वहीं रहता है। चाहे वो कुछ देख रहा हो या सुन रहा हो या कर रहा हो, परंतु जो उसे पसंद है और जिसमें उसकी आसक्ति है और जो उसे चाहिए और जिसका जितना उसे महत्व है, चाहे ऊपर से कुछ भी करता रहे, परंतु अंदर वो उसी को देखते रहता है। बाह्य चीजें देखते हुए, करते हुए, सुनते हुए भी नहीं करता। इसी तरह इस ब्राह्मण जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो सब कुछ करते हुए, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ सुनते हुए अपनी दिनचर्या में मन की जो आंख है, मन का जो ध्यान है, वो उसी पर केंद्रित हो, ताकि बाहर की जो बातें हैं, बाहर से जो जो हलचल हो रही है, बाहर की जो परिस्थितियां है, उनका चाहे कुछ भी रूप हो, परंतु ध्यान केवल उन चीजों पर रहना चाहिए। तो ब्राह्मण जीवन की अलौकिक दिनचर्या, इसमें सुबह से लेकर रात तक ऐसी वो कौन कौन सी बातें हैं जिस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए, जिसको अंदर की आंख से देखते रहना चाहिए, जिसको ऊपर से सब कुछ दिखाई देते हुए भी जैसे हम नहीं देख रहे, नहीं कर रहे, नहीं सुन रहे, केवल उन चीजों को देख रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम ऐसी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, एक तीव्र पुरुषार्थी आत्मा की दिनचर्या में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, एक महान योगी के जीवन में ऐसी कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, उसकी उस अलौकिक दिनचर्या की 10 कंपल्सरी थिंग्स, ऐसी 10 अत्यंत आवश्यक दिनचर्या की बातें देखेंगे। इन 10 में से रात को हर एक में चेक करना है कि 10 के 10 पूरी हुई कि नहीं हुई। यदि हुई है तो भगवान शाबाशी देगा, यदि इनमें से कुछ नहीं हो रही है तो उसे प्रयत्न करना है, क्या कारण है, कौन से कारण है, क्यों नहीं हो पा रही, और यदि हो रही है तो उसकी क्वालिटी क्या है, साधारण है, श्रेष्ठ है, यदि हो रही है तो एकाग्रता कितनी है, पूरी एकाग्रता है या आधी एकाग्रता है या 0, यदि हो रही है तो प्योर है या मिक्स्ड है। तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा की दिनचर्या में ऐसी 10 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज सब जानते हैं, ब्राह्मण आत्माओं की दिनचर्या कहां से चालू होनी चाहिए, कहां से, अमृत वेला। आज सुबह जिन जिसने अमृत वेला मिस कर दिया, वो मन ही मन हाथ उठाना, वैसे नहीं तो नहीं उठाएंगे, मन का हाथ, कोई दूसरा देखे या ना देखे हम खुद जानते हैं, और ना ही किसी को दिखाने की कोई बात है, संपूर्ण पुरुषार्थ आंतरिक है। चाहे सेवाएं कितनी भी हो, चाहे कितना ही लेट क्यों ना हो जाए सोने के लिए, चाहे कितना ही थके ही हुए क्यों ना हो, परंतु ब्राह्मण जीवन का सबसे पहला नियम, मर्यादा क्या है, अमृत वेला। तो कितने बजे उठेंगे अमृत वेला के लिए, 3 बजे, 3:30, और बोलो, बोलते जाओ। कितने बजे उठेंगे, 3 बजे, 3:15, पौने तीन, साढ़े तीन, पौने चार, चार, सवा चार, कौन कौन बोल रहा है? सवा चार, 4:15, साढ़े चार, पौने पांच, 5 बजे कौन कौन उठता है? एकदम रेगुलर, डेली फिक्स्ड 5 बजे, कोई नहीं? 6 बजे अमृत वेला रेगुलर, अमृत वेला फिक्स टाइम, अमृत वेला शक्तिशाली, अमृत वेला संपूर्ण एकाग्रता। अपनी दिनचर्या को सेट करने के लिए सबसे पहली चीज जो ठीक करनी है वो है अमृत वेला। अमृत वेला में जरा भी नींद ना हो, आलस ना हो, सुस्ती ना हो, व्यर्थ ना हो, बुद्धि ना भटके, जागती ज्योत हो, ऐसा शक्तिशाली अमृत वेला जहां होगा वहां दिनचर्या भी शक्तिशाली होगी। अलौकिक दिनचर्या की नींव जो है, आधार स्तंभ जो है, फाउंडेशन जो है, वो है पावरफुल अमृत वेला। चाहे कुछ भी हो जाए, अमृत वेला मिस ना हो, और वो भी कैसा हो? लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति। और यदि नींद आती है तो चलते फिरते अमृत वेला करो, यदि बुद्धि भटकती है तो पहले कुछ पढ़ो फिर अमृत वेला करो, यदि बहुत अधिक नींद आती है तो स्नान पहले कर लेना फिर अमृत वेला करना, यदि घर में बाबा का कमरा बना है तो वहां पर जाकर अमृत वेला करना। अपने बेड, अपनी खटिया पर बैठकर अमृत वेला कौन कौन करता है? उठ गए, अमृत वेला वहीं किया, आधा घंटा किया और फिर लेट गए, बेड वहीं पर तैयार है, अमृत वेला इधर, कभी इधर कभी इधर। तो अमृत वेला अपने बेड पर नहीं होना चाहिए, उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग, उठते ही अगर हो सके तो स्नान, या तो फिर मुंह धो लेना, ब्रश कर लेना। ब्रश करने से सब ऊपर के स्नायु स्टिमुलेट हो जाते हैं। अगर फिर भी नींद आती है तो थोड़ी सी एक्सरसाइज, हो सके तो हल्का सा प्राणायाम, हो सके तो थोड़ी वॉकिंग 2-3 मिनट, और उसके बाद फिर अमृत वेला बैठना। और जो स्थान हो अमृत वेला का वो अपना कमरा ना हो, अलग हो, परंतु यदि स्नान स्थान की कमी है तो नीचे बैठकर, परंतु बेड पर बैठकर नहीं, ठीक है? बेड पर अच्छे नींद के वाइब्रेशंस हैं, उससे बाहर हटकर। और अमृत वेला योग में अलग अलग प्रकार के योग, एक ही योग रोज नहीं करना है, हर दिन का योग अलग हो, जो कल अभ्यास किया था वो आज नहीं, आज नया अभ्यास। और अभ्यास कहां से निकालेंगे? मुरली से, पूरी मुरली से कुछ ना कुछ ड्रिल बनानी है, क्रिएट करनी है रचनात्मकता, नई ड्रिल, नया अभ्यास, नए संबंध। सुबह हमने बाबा से अलग अलग संबंधों से कैसे याद करना, कितने सारे संबंध देखे, बाबा ड्राइवर भी है, बाबा बॉडीगार्ड है, पहरेदार है, बागवान है, खिवैया है, धोबी है, भाई है, पति है, साजन है, दूल्हा है, माशूक है, कितने संबंध है, बच्चा है, माँ है, ढेर सारे संबंध है। वो सारे अलग अलग संबंधों का हर दिन अलग अलग अनुभव करना, कभी उससे भाई बनकर मिलो तो वो भाई बनकर रक्षा करेगा, हर दिन एक नया संबंध। कभी टीचर, ट्यूटर, गाइड, कोच, इंस्ट्रक्टर, मैकेनिक, अलग अलग, आर्किटेक्ट, स्कल्प्टर, शिल्पकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी संबंध दिया जा सकता है। तो अमृत वेला योग कैसा हो? हर दिन नया, हर दिन अशरीरीपन का नया अभ्यास। एक ही योग करते नहीं जाना, नया योग, नवीनता योग में। फिर है अमृत वेला योग में बाबा से बातें करना, भगवान से बातें करना। क्या बातें करेंगे बाबा से? माता है, क्या बातें करेंगे? बाबा मुझे बहुत सिरदर्द है, सिरदर्द ठीक कर दो। हाथ में दर्द है, हाथ का दर्द ठीक कर दो। घुटनों में दर्द है, घुटनों का दर्द ठीक कर दो। पैसे कम है, थोड़े से पैसे दे दो। बेटा पढ़ाई नहीं करता, उसको होशियार बना दो। बेटे की शादी नहीं हो रही है, बाबा शादी करा दो। पोता बहुत मस्ती करता है, उसको ठीक कर दो। तो बाबा से मांगना नहीं है, योग अर्थात भीख मांगना नहीं है। हम राजा बच्चे हैं, प्रजा बच्चे नहीं है। बाबा से अधिकार से सर्वशक्तिया सर्व गुण भाग्य देना है, अधिकार लेना है। तो अमृत वेला भक्ति ना हो, जैसे भगत मांगते हैं हम भी मांगे ना, ये ठीक करो, वो ठीक करो, ऐसा ठीक करो, वैसा ठीक करो। अमृत वेला प्यार से बाबा से बातें करनी है, अधिकार से बातें करनी है, और विश्व की आत्माओं को सकाश देने का महान कार्य करना है। संसार की आत्माएं दुखी है, उदास है, पीड़ित है। शक्तियां लेना और आत्माओं को शक्तियां देना, प्रकृति को पावन करना, प्रकृति के पांच तत्वों को सकाश। ये बहुत सारे काम है जो अमृत वेला करने हैं। तो सबसे पहली बात क्या है? अमृत वेला। दूसरी, अमृत वेला और मुरली के बीच का समय है, 4:45 से लेके तो 7 बजे तक या 6:30, जहां पर जो भी जितना समय मुरली चालू होती है। ये जो समय है 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे का, इसमें श्रेष्ठ ज्ञान का चिंतन हो। पोस्ट अमृत वेला, अमृत वेले के बाद क्या करना है? ज्ञान का मनन, अध्ययन, वॉकिंग, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें उसमें आ सकती है। ये टाइम पर जाकर सो जाना, अर्थात की कमाई चट कर देना। श्रेष्ठ अमृत वेला किया और जाकर सो गए, जबकि ये समय सारा संसार सोया है और यहां पर श्रेष्ठ वाइब्रेशन है, वातावरण में फ्रेशनेस है। हमारा वो समय नींद में ना चला जाए, वॉक पर चले जाना है, कोई क्लास सुननी है या कुछ लिखना है या एकांत में बैठकर चिंतन करना है। अलौकिक दिनचर्या का यह दूसरा नियम, अमृत वेले के बाद दिन की प्लानिंग करनी है। अपनी एक डायरी हो प्लानिंग की, कि आज दिन भर में क्या क्या करना है, किस किस से मिलना है। दिनचर्या की प्लानिंग और मनचर्या की प्लानिंग, कौन कौन सी चीजें याद रखनी है सारे दिन भर, उसकी प्लानिंग। तो ये दूसरा नियम। तीसरा, मुरली। मुरली क्लास में जाना, सेंटर के पवित्र वातावरण में बैठकर मुरली सुनना, ऐसे नहीं कि घर पे ही बैठ के मुरली सुन लेना, पढ़ लेना। यहां पर मुरली सुनने आना, इसका अपना महत्व है। क्या महत्व है? सेंटर पर ही क्यों आना है? घर में तो है मोबाइल, उसमें मुरली है, कंप्यूटर में मुरली है, सेंटर पर ही क्यों आना है? क्यों आना है? क्या सेंटर के वाइब्रेशन, सेंटर का वायुमंडल। घर में यदि कोई मुरली पढ़े तो कितना देर में पढ़ लेता है? 10 मिनट में पूरी कर देंगे या 15 मिनट बस। यहां पर 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, एक घंटा तक मुरली चलती है। उतना समय वहां बैठना, अर्थात हम अपने शरीर को एक जगह बिठा रहे हैं, मन को स्थिर कर रहे हैं, बाहर के वातावरण से उस समय हम अलग है, और यहां बैठे बैठे मन में किसी समस्या का हल अपने आप मिल सकता है, या बाबा की ऐसी कोई पॉइंट सुनते सुनते अंदर टच हो सकती है जिसमें हमारे जीवन की समस्या का हल है, और कोई अलौकिक अनुभव हो सकता है, कोई साक्षात्कार, कुछ भी हो सकता है। तो सेवा केंद्र पर आना, नियमित आना, रेगुलर आना, टाइम पर आना, अपने यूनिफॉर्म में आना, व्हाइट ड्रेस और बैच, स्टूडेंट के जैसे आना, डायरी, नोटबुक, पेन, पॉइंट्स नोट करना इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और यदि किसी कारण से मुरली मिस हो जाती है तो उस दिन दोपहर में या शाम को जाकर मुरली सुननी है या तो पढ़नी है। तो तीसरी चीज जो है दिनचर्या की, जो हर एक ब्राह्मण आत्मा को करनी है, कौन सी है? मुरली सुनना, मुरली क्लास में जाना। चौथा, भोजन। चौथा है भोजन। कितनी माताएं यहां है जो रोज भोग लगाती है? शिव बाबा को भोग कौन कौन लगाता है? और बाकी भाई कौन कौन है जो भोग लगाते हैं रोज? भाई भी बहुत सारे हैं, पर माताएं इतनी नहीं है, जितनी उपस्थित है उससे आधे भी नहीं है जो भोग लगा रहे हैं। भगवान को 24 घंटे में एक बार भोग लगाना है। जो भी भोजन बनाया जा रहा है घर में, सबसे पहले बाबा के सामने भोग लगाना है, ताकि वो भोजन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, और उस भोग लगाने की प्रोसेस, प्रक्रिया में हमारा समर्पण भाव है। जो भी कुछ पहले उसका और फिर हम ले रहे हैं। किसी अव्यक्त संदेश में बाबा ने कहा था, यदि योग युक्त होकर भोजन बनाया जाए और योग युक्त होकर भोजन खाया जाए तो 50% प्यूरिटी वैसे ही आ जाएगी। संपूर्ण योग युक्त होकर बाबा की याद में भोजन बनाया जाए और याद में खाया जाए तो 50% प्यूरिटी जीवन में स्वतः आ जाएगी। तो भोजन प्रेम से और याद में बनाना, भोग लगाना और फिर भोग खाना। और जिनके घर में युगल या बच्चे ज्ञान में नहीं चलते, उनको तो विशेष याद में बनाया हुआ भोजन खिलाना चाहिए। और जो लोग और जो मेहमान घर पर आते हैं, उनको भी विशेष याद में बनाया हुआ भोजन खिलाना है। मनुष्य के हृदय का मार्ग उसके पेट से चालू होता है। यदि किसी को खुश करना है तो क्या करेंगे? उसके दिल तक पहुंचना है तो कहां से निकलता है मार्ग? पेट से। उसके पेट को खुश करो तो उसका दिल अपने आप खुश हो जाएगा। यदि किसी को ज्ञान में लाना है तो क्या करेंगे? उसके पेट को जरा पहले ज्ञान में लाओ। उसका पेट ज्ञान में आ जाए तो उसकी बुद्धि और हृदय भी ज्ञान में आ जाएगा। तो भोजन बनाने की विधि, भोजन भोग लगाने की विधि और भोजन खाने की विधि, जितना हो सके एकांत में भोजन अगर खाए तो बहुत अच्छा है। याद में खाया जाए तो बहुत अच्छा है। तो चौथा नियम है भोजन। पांचवा, ट्रैफिक कंट्रोल। एक ट्रैफिक कंट्रोल सुबह बजता है 4 बजे, फिर 7 बजे, फिर 10:30 बजे, फिर 12 बजे, फिर 5:30 बजे, फिर रात को 9:30 बजे, 7:30 बजे एक। इस तरह से ट्रैफिक कंट्रोल सेट है, परंतु हम अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद सेट करें। मधुबन में 1-1 घंटे में गीत बजता है अभी तो। ट्रैफिक कंट्रोल अर्थात मन की जो ट्रैफिक है, विचारों के विचार जो भाग रहे, एक क्षण के लिए उन्हें स्टॉप कर दे। 3 मिनट का गीत बजता है, उस 3 मिनट में क्या क्या करना है? बहुत सारे अलग अलग अभ्यास किए जा सकते हैं। एक तो मैं अशरीरी आत्मा हूं बस, और मुझसे किरणें फैल रही है। मैं शांत स्वरूप हूं और मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही है। दूसरा, बाबा के पास जाना, और जहां पर भी हम हैं, कितने भी बिजी है, बाबा को ऊपर सब कुछ बता के वापस आ जाना 3 मिनट के अंदर। या फिर विश्व की आत्माओं को सकाश, यदि स्थिति शक्तिशाली है तो, या कुछ भी नहीं हो रहा है तो सुबह जो मुरली सुनी उसमें क्या पॉइंट्स थे उसको याद करने की कोशिश करना। या आज सुबह मुरली में कौन सी पावरफुल पॉइंट थी। तो पांचवी जो चीज है ट्रैफिक कंट्रोल। और यदि हम बहुत बिजी है उस समय, जिस समय ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा है, तो अपना ट्रैफिक कंट्रोल हम थोड़े देर के बाद करें। यदि कोई सम्मुख है, बाहर के अज्ञानी, उनके बीच में कार्य करना है या बहुत बिजी है, तो हमें पता है ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा है, परंतु हम अपना ट्रैफिक कंट्रोल थोड़ी देर के बाद करें, वो काम पूरा करने के बाद, यदि वो अत्यंत आवश्यक है तो। तो अभी हम 1 मिनट की ड्रिल करेंगे, सभी अलर्ट होके बैठेंगे, केवल 1 मिनट की ड्रिल। भ्रुकुटी के मध्य में स्थित मैं, आनंद स्वरूप आत्मा, सच्चित आनंद स्वरूप, मुझ आत्मा से आनंद की किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं सच्चित आनंद हूं। आनंद मेरा स्वभाव, आनंद
तो इस तरह अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद सेट करना है, कैसे विचार जो भाग रहे हैं उनको स्टॉप कर देना, स्टैच्यू कर देना है। सिक्स्थ कर्मयोग, जो भी दिनचर्या में काम किए जाए, सेवा की जाए, योग जो भी ड्यूटीज किए जाए, उन सब में आत्माभिमानी स्थिति बीच बीच में, उन सब में आत्मिक दृष्टि बीच बीच में, उन सब में निस्वार्थ भाव, निमित्त भाव, बाबा की याद, श्रीमद का पालन, ऐसी तीन चार चीजें बीच बीच में प्रैक्टिस करने तो ही वो कर्म श्रेष्ठ कर्म होंगे, नहीं तो निकृष्ट कर्म होंगे। कौन कौन सी चीजें प्रैक्टिस करनी है? पांच, आत्माभिमानी स्थिति, बाबा की याद, श्रीमत, निस्वार्थ भाव, निमित्त भाव। आत्माभिमानी स्थिति में स्वयं आत्मिक स्थिति में रहना और दूसरों को आत्मा देखना। दिनचर्या में बहुत व्यस्त है, ट्रैफिक में है, कोर्ट में है, स्टेशन पर है, एयरपोर्ट पर है, भीड़ में है, मीटिंग में है, घर में है, मेहमानों के बीच है, भीड़ भाड़ में है, मार्केट में है, जहां पर भी है वहां पर बीच बीच में आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि, बाबा की याद, श्रीमत का पालन, निस्वार्थ भाव, निमित्त भाव, जैसे करण करावन हार करा रहा है, तो ये सारी चीजें जहां होगी वहां कर्म योगी जीवन होगा। छठवीं पॉइंट है कर्मयोग। नेक्स्ट सेवेंथ, नुमा शाम का योग, 6:30 to 7:30 मेडिटेशन। यदि नहीं हो सकता है तो कम से कम 7 to 7:30। जैसे अमृत वेला का महत्व है वैसे ही नुमा शाम के योग का महत्व है। जैसे अमृत वेला शक्तिशाली, उसी तरह इवनिंग योगा, इवनिंग योग भी शक्तिशाली हो। जैसे अमृत वेले के लिए बहुत ज्यादा ध्यान है परंतु शाम के योग के लिए कम ध्यान है, उस शाम के योग को भी पावरफुल योग बनाना है। कम से कम आधा घंटा और यदि समय है तो एक घंटा। जैसे अमृत वेला एक स्थान पर बैठ जाते हैं, जैसे अमृत वेले के लिए बहुत ध्यान है, टाइम फिक्स है, वैसा ही टाइम शाम का फिक्स करना है। जो अशरीरीपन अमृत वेला होता है वही अशरीरी अवस्था नुमा शाम के योग में भी हो। जो अतिंद्रिय सुख सुबह मिलता है वही अतिंद्रिय सुख शाम को भी मिलेगा। तो अलौकिक दिनचर्या में सेवेंथ पॉइंट इज नुमा शाम का योग। एट्थ पॉइंट, ज्ञान चर्चा। क्या करनी है? ज्ञान की चर्चा, उसके लिए एक ग्रुप की आवश्यकता है और ग्रुप बनता है मिनिमम दो लोगों से। यदि कुमार है, भाई है, तो आपस में बैठना और क्या करना, ज्ञान की लेन देन। यदि माताएं हैं और घर में और एक दो लोग ज्ञान में हैं, तो दोनों मिल के बैठना और क्या करना, डिस्कशन। क्या डिस्कशन करेंगे? आज बाबा ने मुरली में, वाक वरदान में क्या कहा, स्लोगन में क्या कहा, प्रश्न में क्या कहा, पावरफुल बीच में पॉइंट्स कौन सी थी, महावाक्य क्या थे, मुरली की डिस्कशन, मुरली का डिस्कशन करना है। जैसे आज की मुरली में ये है ईश्वरीय फैमिली, जैसे आज की मुरली में झूला, नशा, झलक पलक, खुश नसीब कौन, अलग अलग जगह अलग अलग पॉइंट्स बताया है। तुम ब्राह्मणों की इस समय तीसरा नेत्र तुम्हारा खुला है। तीसरा नेत्र क्या होता है इसकी चर्चा करना है। तो एट पॉइंट कौन सी है? डिस्कशन। सेवेंथ या एट? एट, ज्ञान की चर्चा। कौन कौन करते हैं ज्ञान की चर्चा? एक, दो, तीन, चार। ज्ञान की चर्चा, आपस में लेन देन, बातें। कुछ दिन पहले मुरली में महावाक्य था, मीठे बच्चे तुम्हें एक दूसरे की पालना करनी है। कैसे? ज्ञान की लेन देन करने कर। एक छोटा सा ग्रुप बनाना है, ठीक है, और वहां पर शाम को या दिनचर्या में कभी भी जब समय हो बैठना है और डिस्कशन करना है। मुख से ज्ञान निकलना चाहिए तो ज्ञान के संस्कार पक्के होंगे। जैसे व्यर्थ बोलने के संस्कार है, वैसे ज्ञान सुनाने के संस्कार हो। नाइन, मुरली की स्टडी। रात को सोने से पहले दो काम करने हैं। एक तो कोई भी अव्यक्त वाणी का छोटा सा एक पैराग्राफ पढ़ना है, या फिर क्लास सुननी है। सोने से पहले दो काम करने हैं, एक तो रूहानी स्टडी, पढ़ाई, कुछ तो पढ़ना है। ऐसे ही नहीं सो जाना है, कुछ तो अव्यक्त महावाक्य बाबा की, अव्यक्त मुरलियों की किताबें हैं बहुत सारी, उसमें से कोई भी एक मुरली, किसी भी एक साल की मुरली रोज अपनी सीरीज चालू करनी है। जैसे 80 की मुरली आपने चालू की, 80s की, तो एक पैराग्राफ आज रात में, उसके दूसरी रात दूसरा पैराग्राफ, ऐसे दो तीन दिन में एक मुरली पूरी करनी है। रोज रात में सोने से पहले अव्यक्त मुरली की स्टडी, अध्ययन, रीडिंग, ये एक। और लास्ट काम, दसवां चार्ट। क्या करना है? लिखना है कि आज अपना चार्ट खुद बनाएंगे। कितना समय याद किया? कोई विकार तो नहीं आ गया? कोई विकर्म तो नहीं किया? सेल्फ चेकिंग चार्ट। किसी को दुख तो नहीं दिया? अपशब्द तो नहीं बोले? पाप तो नहीं किया? खुशी, खुश रहे और खुशी बांटी? नुमा शाम का योग किया कि नहीं किया? भोजन याद में बनाया कि नहीं बनाया? भोग लगाया तो कैसे लगाया? चार्ट लिखना है, अपना चार्ट खुद बनाना है। ये भी कर सकते कि नया नया चार्ट हो, और जो चार्ट नहीं बना पाते उन्हें हो सके तो डायरी लिखना है, क्या क्या किया सुबह से लेकर रात तक। और जो लिखना ही नहीं जानते, ऐसे कितने हैं जिनको लिखना नहीं आता? सबको आता है, बहुत अच्छा। तो लिखना है, और लिखना नहीं आता है तो वैसे ही बाबा को अपनी दिनचर्या सुनानी है कि हमने कितने बजे उठे, फिर उठने के बाद क्या किया, फिर मुरली क्लास गए कि नहीं गए, फिर भोजन कैसे बनाया, फिर उसके बाद में ट्रैफिक कंट्रोल किया कि नहीं किया, फिर उसके बाद में कर्मयोग कैसा रहा, नुमा शाम का योग कैसा रहा, मुरली डिस्कशन की कि नहीं की, मुरली रीडिंग की कि नहीं की, और रात में चार्ट। तो अलौकिक दिनचर्या में ऐसी 10 बातें इंक्लूड करनी है। ओम शांति। सभी फिर से अलर्ट बैठेंगे, गीत बजेगा, और जितनी 10 बातें बताई, मन ही मन में 10 पॉइंट्स को रिवाइज करना है, ठीक है।